ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हमने अध्याय एक कंप्लीट किया था और आज अध्याय दो। इस अध्याय का नाम है गीता का सार। ये दूसरा अध्याय भगवद गीता में आगे आने वाले जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्यायों का सार तत्व इस अध्याय में दिया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम दिया गया है गीता सार। जैसे भगवद्गीता में ज्ञान योग भी हमें पता चलता है, भक्ति योग भी पता चलता है, कर्म योग भी पता चलता है, तो इस अध्याय में इन सारे योगों का सार दिया गया है। शॉर्ट कुछ कुछ श्लोकों में भगवान ने इसके बारे में बताया है और ये अध्याय भगवद गीता का एक बहुत बड़े अध्याय में से एक है, क्योंकि इस अध्याय में टोटल 72 श्लोक हैं, 72 श्लोकस। और पिछले अध्याय हमने देखा था कहाँ पे एंड हुआ था, कि अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव छूट गया था और अर्जुन उसी अपने रथ पे बैठ गए थे। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूबे हुए अर्जुन अपने रथ पे ही बैठ जाते हैं। और इसके बाद इस अध्याय में मेनली पांच सेक्शंस हैं, पांच थीम हैं जिनमें इस अध्याय को डिवाइड किया गया है। तो कल हमने देखा था कि अर्जुन के चार प्रकार के डाउट थे और पांचवा जो डाउट था उस डाउट का नाम था इनडिसीजन। अर्जुन कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे कि उनको क्या करना चाहिए। तो शुरू के 10 श्लोक उसी पर आधारित हैं, अर्जुन अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अलग 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 तथ्य बता रहे हैं। अर्जुन इस तरह से बताते हैं, संजय से प्रारंभ होता है ये चैप्टर। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्वपूर्णा कोलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि तम तथा कृपया विष्टम, अर्जुन की आंखों से आंसू आ रहे हैं, अर्जुन की आंखों से आंसू आ रहे हैं अश्रुपूर्णा कोलेक्षणम। इस तरह से आता है कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और अर्जुन शोक करते हुए इस तरह से बात बता रहे हैं। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो जब अर्जुन इस तरह से रथ पे बैठ के रोने लगते हैं तो यहाँ पे एक शब्द उपयोग किया गया है कृष्ण के लिए, मधुसूदन नाम से एक शब्द उपयोग किया गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष रूप से। इस मधुसूदन शब्द का मतलब है कि मधुसूदन शब्द का मतलब है कि भगवान ने एक बार मधु नाम के एक दैत्य को मारा था, मधु नाम के एक असुर को भगवान ने वध किया था और अर्जुन चाह रहे थे कि अर्जुन के मन में जो डाउट है वो भी एक असुर के समान है और भगवान कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जो उनको अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख करके रखा है। तो इसलिए अर्जुन इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और अर्जुन भगवान से पूछते हैं, जब भगवान इस तरह से अर्जुन को देखते हैं तो भगवान फिर उनको बताते हैं कि कुतस्त्व अकस्मल्मिदम्। इस प्रकार का युद्ध के समय, युद्ध के जस्ट चालू होने के पहले कैसे आप इस तरह से दुख को प्राप्त हो गए हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, आप इस तरह से जो रो रहे हैं जस्ट युद्ध चालू होने के पहले और युद्ध करने के लिए आप मना कर रहे हैं, ये आपके जैसे आपके जैसे आर्य को शोभा नहीं देता है। आर्य शब्द का मतलब है ऐसे लोग जो वैदिक संस्कृति को जानते हों, उनको आर्य बोला जाता है। और इस तरीके का कसमल जो है ये आपको कहाँ से आ गया, और ये गलत समय में, विषमय समुपस्थित, विषमय मतलब विषम समय में ये आपके सामने उपस्थित हुआ। और भगवान एक्चुअली आश्चर्यजनक तरीके से पूछते भी हैं, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और इस श्लोक में श्री भगवान उवाच का मतलब है कि भगवान के जो तीन स्वरूप होते हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उसमें से जो सबसे उच्च स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, वो स्वयं हैं, और वो अर्जुन के रथ पे उनके साथी बन के बैठे हुए हैं। और भगवान पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, युद्ध चालू होने वाला है, आप खुद भी युद्ध के लिए तैयार थे और ऐसे गलत समय पर आपके मन में ये कसमल मतलब गंदी वस्तु कैसे आई आपके मन में, और ये जो है अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, आप ये जो इस तरह से दुख मना रहे हैं ये कोई ऐसे अच्छे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करेगा, निम्न प्राप्ति की तरफ लेके जाएगा, अपयश की प्राप्ति कराएगा। और इस तरह से भगवान अर्जुन को फिर बताते हैं क्लेब्यम मास्मम, कि आप क्लेब्यम का मतलब होता है नपुंसकता, आप तो बहुत बड़े हीरो हैं तो आप नपुंसकता को प्राप्त मत होइए इस तरह से, और हृदय के इस दौर्बल्यता को त्याग के युद्ध करिए। इस तरह से 10 श्लोक तक ये चलता है। अर्जुन एक्चुअली एक बार फिर भगवान से पूछते भी हैं इसके बाद कि मैं कैसे अपने रिलेटिव्स को, अपने सीनियर्स को युद्ध में मारूंगा, कैसे मैं भीष्म को, द्रोणाचार्य को युद्ध में मार सकता हूँ। और भगवान को एक शब्द फिर से उपयोग करते हैं, वो मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब भगवान ने मधु असुर का वध किया था, तो भगवान को बताते हैं कि भगवान मधु तो आपका एक शत्रु था और आपने उसका वध किया था, परंतु यहाँ पे आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, इन सब का वध करूँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो एक तरह से भगवान से पूछ रहे हैं कि आपसे अगर बोला जाए कि आप अपने पिता का, आप अपने चाचा का, उग्रसेन का, इन सभी का वध करेंगे, या सांदीपनिक मणि का वध करेंगे, तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप मुझसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं अपने सीनियर्स का वध करूं? और फिर अर्जुन फिर बता रहे हैं कि ऐसे गुरु और उससे नहीं हो रहा, ऐसे गुरु या जो सुपीरियर्स हैं उनको मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग के इस संसार में जी सकूं, भले ही ये सारे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, परंतु हैं तो गुरु, अगर उनका वध किया जाता है तो मैं जितने भी वस्तुएं खाऊंगा वो सारी वस्तुएं उनके खून से सनी होंगी। इस तरह से अर्जुन बता रहे हैं कि ये मेरे गुरु हैं, उन मार के जीने के भले ही वो लोग संसार में लाभ करना चाहते हैं, परंतु हैं तो गुरु, अगर उनका वध करेंगे तो मैं जो भी वस्तुएं खाऊंगा वो सारी उनके रक्त से सनी हुई होंगी। और अर्जुन हालांकि बहुत सारे इस तरह से कृष्ण को दलील दे रहे हैं कि आप इस तरह से क्यों मुझे बोल रहे हो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, परंतु अर्जुन खुद भी कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि भगवान कृष्ण अगर बोल रहे हैं कि युद्ध करना है तो युद्ध करना ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। साउंड चला गया नहीं? इस सर किसका के लगाइए, यहाँ पे साउंड है। भी फुल करिएगा साउंड। तो सातवें श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय में, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन बताते हैं, काल्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता येय स्यान् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन हालांकि बहुत सारे यहाँ पे अपने अपने तरीके बता रहे हैं, परंतु इसमें आ रहा है कि वो खुद दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, कृपणता के कारण। इस तात्पर्य में लिखा है कि कृपणता के कारण अर्जुन को खुद समझ में नहीं आ रहा है, उनको पता है कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना उनके लिए लाभप्रद नहीं है, परंतु तब भी अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए वो पूरी तरह से कन्फ्यूज होकर भगवान कृष्ण के लिए सरेंडर करते हैं और उनको अपना गुरु स्वीकार करके उनकी शरण लेते हैं। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अध्याय का शायद सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद भी करना चाहिए सभी को। अर्जुन बता रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस अध्याय इस श्लोक के बाद और अगले दो तीन श्लोकों में वो कृष्ण की शरण लेके फिर बताते हैं कि अभी मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मैं इस शोक को दूर कर सकूं। अगर मुझे स्वर्ग के देवताओं का राज्य भी मिलेगा तब भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता हूं। तो इसके बाद भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। तो पहला सेक्शन जो है पहले श्लोक से लेकर दसवें श्लोक तक चलता है, अर्जुन के डाउट्स और अर्जुन का सरेंडर। और अर्जुन अपने मित्र के जैसे संवाद को रोकना चाहते हैं और सातवें श्लोक के बाद भगवान की शरण लेते हैं एक शिष्य के जैसे और भगवान से गाइडेंस की इच्छा रखते हैं। तो दसवें श्लोक में आता है कि इस तरह से भगवान ने अर्जुन को हंसते हुए, मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो मित्र ऋषिकेश और गुणाकेश के बीच में वार्तालाप चल रहा था, मित्र के रूप में दोनों समान थे, परंतु अर्जुन वॉलंटरीली अपने आप को शिष्य स्वीकार करते हैं और भगवान को गुरु स्वीकार करते हैं और फिर वो भगवान से गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उन दोनों का संबंध मित्र के जैसा था, इसलिए आवश्यकता नहीं था कि अर्जुन जो है वो कृष्ण को अपने गुरु जैसा स्वीकार करेंगे, परंतु जब इस श्लोक में स्वीकार करते हैं उसके बाद कृष्ण भी गुरु को भूमिका लेते हैं और फिर अर्जुन को गाइड करना प्रारंभ करते हैं। सबके स्वामी होने के कारण कृष्ण सदैव श्रेष्ठ पद पर हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की। जैसे आध्यात्मिक गुरु शिष्य को गाइड करता है, ट्रेन करता है, उसी तरह से कृष्ण जो है वो अर्जुन को अभी गाइड करना प्रारंभ करेंगे, भगवद गीता का नॉलेज चालू करेंगे 11वें श्लोक से। और चूंकि अर्जुन बहुत समय से अलग अलग धर्मशास्त्र नीति शास्त्र की बातें बता रहे हैं, तो जब कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु होने के नाते वो अपने शिष्य को डांटते हैं, असोच्यन अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। इस श्लोक में बताते हैं कि असोच्यन अन्वशोचस्तम, कि अर्जुन से बताते हैं, एक तरफ तो आप बहुत विद्वानों जैसी बातें करते हैं, अलग अलग दलीलें देते हैं विद्वानों के समान, परंतु जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए आप शोक करते हैं। असोच्यन अन्वशोचस्तम, जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए आप उसके लिए शोक करते हैं और विद्वानों के समान वार्तालाप भी करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विद्वान होते हैं वास्तविकता में वो जीवित प्राणी के लिए भी शोक नहीं करते हैं और मृत प्राणी के लिए भी शोक नहीं करते हैं, ना अनुशोचन्ति पंडिता। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि आप एक तरह बुद्धिमान की जैसे बात कर रहे हो, आप सामान्य बात जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से विद्वान जैसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्वान जीवित तो मृत दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। और इसके बाद करीब अगले 19 श्लोकों तक भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं। अर्जुन का जो पहला डाउट था, वो पहला डाउट था कि दया के कारण अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो उस दया को भगवान ज्ञान के द्वारा दूर करते हैं। और ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, जो कि भगवान बताते हैं आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है, देर इज नो डेथ फॉर द सोल। 19 श्लोकों में भगवान इस तरह से बताते हैं। बाद में श्लोक में बताते हैं कि ना हे अर्जुन, ना तो मैं, ना तुम, ना ये सारे राजा, ये हमेशा इस संसार में उपस्थित थे, या तो किसी किसी एक शरीर में या दूसरे शरीर में, ये हमेशा उपस्थित रहेंगे भी। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि शरीर शरीर की मृत्यु, शरीर का विनाश होना अवश्यम भावी है, परंतु आत्मा जो है वो हमेशा सनातन रहती है। और भगवान ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि न चैव न भविष्यामः, आत्मा की कभी मृत्यु भी नहीं होती है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा भगवान से मिल जाएगी। क्योंकि एक संप्रदाय है मायावाद संप्रदाय, जो कि इस तरह से बताता है कि मुक्ति के बाद आत्मा जो है वो भगवान में लीन हो जाती है, परंतु भगवान इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं भविष्य में भी मैं और तुम अलग रहेंगे और ये सारे राजा भी रहेंगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि मुक्ति के बाद अर्जुन की आत्मा कृष्ण से मिल जाएगी या एक जीव की आत्मा भगवान से मिल जाएगी, हमेशा ये अलग अलग रहते हैं। और जीव भगवान की सेवा करना चाहता है, सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। तो जो इस प्रयास को नहीं समझते हैं, उनका कार्य रहता है अभक्तों के द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास, मधुमक्खी द्वारा मधु के पात्र चाटने के समान है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इस प्रकार भगवद गीता के रहस्य को केवल भक्त समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। भगवद गीता में इसीलिए बताया गया है कि भगवद गीता का जो ये रहस्य है इसको केवल भक्त लोग समझ सकते हैं और कोई इसको नहीं समझ सकता है। जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जैसा स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए भगवद गीता का ये ज्ञान समझना बहुत कठिन होता है। इस तरह से अगले अगले श्लोकों में, सारे श्लोक हम नहीं देखेंगे पर ये थीम इसी तरह से है। कहिए, और इसका कोई ऑप्शन नहीं आता है, बंद ही करना पड़ता है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बंद, लाइव एंड।